पहला, ध्वनि साम्य। किसी एक परिवार की भाषाओं में प्रायः यह विशेषता मुख्य रूप से देखी जाती है कि उनमें मूल ध्वनियाँ सदैव सुरक्षित रहती हैं और अपने समीपवर्ती अन्य भाषा ध्वनियों से वे प्रभावित नहीं होती। जिन भाषाओं में उनकी मूल ध्वनियाँ जैसी की तैसी बनी रहती हैं, उनको एक परिवार की भाषाएँ माना जाता है। जैसे भारत में मुंडा परिवार की भाषाएं उत्तर में आर्य परिवार से और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाओं से घिरी हुई हैं, फिर भी उनकी ध्वनियों पर न तो आर्य परिवार की ध्वनियों का प्रभाव पड़ा है और न द्रविड़ परिवार की ध्वनियों ने उन्हें प्रभावित किया है। वे अभी तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए हैं। ऐसे ही फारसी की ध्वनियों का संबंध जब भारतीय आर्य भाषाओं के साथ स्थापित हुआ, तब फारसी ध्वनियों से बने हुए कागज, मजदूर, खसम, करीब, वक्त, मालूम आदि शब्द हिंदी में आते ही क्रमशः कागज, मजदूर, खसम, गरीब, वक्त, मालूम आदि हो गए। इससे सिद्ध है कि एक परिवार की ध्वनियाँ सदैव एक सी रहती हैं। चाहे दूसरे परिवार के शब्द भले ही उस परिवार में आ जाएं, उस परिवार की मूल ध्वनियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उन शब्दों को उस परिवार में प्रचलित ध्वनियों के अनुकूल ही बोला जाता है। इसीलिए तो अंग्रेजी का सिग्नल हिंदी में सिंगल हो गया है, अंग्रेजी का लैंटर्न हिंदी में आकर लालटेन हो गया है और अंग्रेजी का बॉक्स हिंदी में आकर बक्स हो गया है। यह हिंदी की अपनी ध्वनियों के अनुसार उक्त अंग्रेजी शब्दों के ढाल लेने पर हुआ है। यही कारण है कि एक परिवार का निश्चय करने पर सर्वप्रथम ध्वनियों पर ध्यान देना परमावश्यक होता है। दूसरा, शब्द साम्य। भाषाओं का परिवार निश्चय करने में शब्द साम्य का भी अत्यंत महत्व है। जब विविध भाषाओं के शब्द समूह का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि अमुक अमुक भाषाओं में एक सा शब्द समूह प्रचलित है, तब उन सभी भाषाओं को एक परिवार की भाषा माना जाता है। इस साम्य को देखने के लिए भाषा के शब्द समूह को निम्नलिखित चार वर्गों में विभाजित किया जाता है। क, किसी जनसमुदाय के सभी व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले माता, पिता, भाई आदि परिवार संबंधी शब्द, मैं, तू, वह आदि सर्वनाम संबंधी शब्द, आँख, कान, नाक, मुंह आदि शरीर अवयव संबंधी शब्द, एक, दो, तीन, चार आदि संख्यावाचक विशेषण वाले शब्द, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना आदि दैनिक क्रिया व्यापार संबंधी शब्द, आग, पानी, लकड़ी, मिट्टी, अनाज आदि घर गृहस्थी के व्यवहार में आने वाली वस्तुओं के बोधक शब्द आदि। ख, ऐसे पर्यायवाची शब्द जिन्हें सभी व्यक्ति व्यवहार में तो नहीं लाते किंतु उनको सभी लोग भली प्रकार समझते हैं, जैसे दरी, गद्दा, तकिया, लिहाफ, चादर आदि ओढ़ने बिछाने के शब्द, कमीज, कोट, धोती, कुर्ता, साड़ी आदि नित्य प्रति पहनने के वस्त्र संबंधी शब्द, थाली, लोटा, गिलास, कटोरी, बाल्टी आदि नित्य प्रति काम में आने वाले बर्तन संबंधी शब्द। ग, शिक्षित एवं सभ्य व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले वे शब्द जिनका संबंध मुख्यतया शिक्षा एवं सभ्यता से होता है, जैसे कलम, दवात, कागज, किताब, कापी, मेज, कुर्सी, पलंग, बैठक कक्ष, स्नानागार, रसोई घर, पाखाना, बागीचा, टेलीफोन भवन, टेलीविजन आदि। घ, साहित्य, कला एवं विज्ञान संबंधी वे शब्द जिनका प्रयोग विशिष्ट विशिष्ट कलाकार, साहित्यकार एवं वैज्ञानिक किया करते हैं, जैसे काव्यशास्त्र, उपन्यास, कहानी, चित्रकला, संगीत कला, गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा, परमाणु बम आदि। उक्त वर्गीकरण अत्यंत स्थूल दृष्टि से किया गया है। इससे यही पता लगाना अभिष्ट है कि किन किन भाषाओं में कौन कौन से वर्ग के शब्द समूहों में अधिक साम्य दृष्टिगोचर होता है। जितने अधिक वर्ग के शब्द समूहों में जितना अधिक साम्य, जितनी अधिक भाषाओं में दृष्टिगोचर होगा, उतनी ही अधिक भाषाएं एक परिवार की मानी जाएंगी। जैसे विद्वानों ने पिता के लिए संस्कृत में पितृ, अवेस्ता में पितर, फारसी में फिदर, ग्रीक में पेटर, लैटिन में पेटर, इटालियन में पेडर, स्पेनिश में पेडर, डेनिश में फेडर, स्वीडिश में फेडर, जर्मनी में वेटर, पुरानी अंग्रेजी में फेडर, आधुनिक अंग्रेजी में फादर शब्द देखा। ऐसे ही संख्यावाचक विशेषणों में सात के लिए संस्कृत में शब्द, फारसी में हफ्त, ग्रीक में हैप्टा, लैटिन में सेप्टम, फ्रेंच में सेप्ट, स्पैनिश में सेइट, गॉथिक में सिबन, जर्मन में सिबन तथा अंग्रेजी में सेवन शब्द देखा। ऐसे ही अन्य शब्दों की भी तुलना की तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यह शब्द साम्य उक्त भाषाओं को किसी एक परिवार की भाषाएं घोषित करता है। अतः उन्होंने इसी आधार पर उक्त भाषाओं की गणना भारोपी परिवार में करना आरंभ कर दिया। तीसरा, व्याकरण साम्य। भाषाओं के परिवार निश्चित करने के लिए व्याकरण के समानता पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि एक परिवार की भाषाओं में व्याकरण तथा रचना संबंधी तत्वों में पर्याप्त साम्य होता है। व्याकरण साम्य पर विचार करते समय भाषाओं के अंतर्गत निम्नलिखित तीन बातों का जानना सर्वथा अपेक्षित होता है। क, धातुओं में शब्द निर्माण की प्रणाली। ख, प्रतिपादकों में विविध प्रत्ययों के योग से शब्द निर्माण की विधि। ग, वाक्य रचना प्रणाली। विविध धातुओं से जब शब्द बनाए जाते हैं तब एक परिवार की भाषाओं में वे एक रूप में ही प्रचलित होते हैं। जैसे कृ धातु से कार्य, काम, करना, क्रिया आदि शब्द बने हैं। इनका प्रचार एवं प्रसार समस्त आधुनिक आर्य भाषाओं में है। ऐसे ही प्रतिपादकों में आ प्रत्यय जोड़कर लता, विद्या, प्रिया, माता, सुता, रमा, कला आदि कितने ही शब्द बने हैं जो समस्त आधुनिक आर्य भाषाओं में यत्किंचित रूपांतर के साथ प्रचलित हैं। ऐसे ही वाक्य रचना में भी साम्य देखना आवश्यक होता है। जैसे अंग्रेजी का राम टेक्स्टी वाक्य का रूपांतर हिंदी में राम पीता है चाय होगा, किंतु हिंदी में यह वाक्य राम चाय पीता है ही लिखा जाता है। इस प्रकार वाक्य रचना प्रणाली को भी ध्यान में रखकर ही सगोत्री भाषाओं में एक परिवार का निर्धारण किया जाता है। चौथा, स्थानीय समीपता। भाषाओं के परिवार निर्धारण में स्थानीय समीपता को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज, बुंदेली, अवधी, कन्नौजी, बघेली आदि बोलियों के समीप ही मैथिली, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी आदि भाषाएं भी हैं, और इसमें स्थान संबंधी समीपता के कारण ही बहुत कुछ साम्य भी है। इसलिए इन्हें निसंकोच एक आर्य परिवार की भाषाएं माना जाता है। ऐसे ही तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाएं भी परस्पर एक दूसरे के अत्यंत निकट हैं और इनमें भी स्थानीय सामीप्य विद्यमान है। अतः इन्हें एक द्रविड़ परिवार की भाषाएं माना गया है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के भाषाओं में भी स्थानीय समीपता को ध्यान में रखकर मुख्यतः उन्हें एक परिवार की भाषाएं घोषित कर दिया गया है, जबकि उनमें पर्याप्त विभिन्नता है। अतः स्थानीय समीपता को भी पारिवारिक वर्गीकरण का एक आधार माना जाता है। संसार की भाषाओं के परिवार। उपर्युक्त आधारों पर विद्वानों ने संसार भर की भाषाओं के विभिन्न परिवार निश्चित किए हैं। अभी तक भाषा परिवारों का जो कुछ निर्धारण हुआ है उसे देखने पर जान पड़ता है कि भाषा परिवारों की संख्या 100 तक पहुंच गई है। परंतु कतिपय विद्वान संसार की संपूर्ण भाषाओं को 14 परिवारों में विभक्त करना ही श्रेयस्कर समझते हैं। सुविधा और सुगमता के दृष्टि से सर्वप्रथम संसार की संपूर्ण भाषाओं के परिवारों का निर्धारण करने के से पूर्व उन्हें चार खंडों में विभक्त कर सकते हैं। क, यूरेशिया खंड। ख, अफ्रीका खंड। ग, प्रशांत महासागरीय खंड। और घ, अमेरिका खंड। अब इन खंडों के अनुसार भाषा परिवारों की गणना इस प्रकार की जा सकती है। क, यूरेशिया खंड। पहला, भारोपी परिवार। दूसरा, द्रविड़ परिवार। तीसरा, तिब्बती चीनी परिवार। चौथा, सामी परिवार। पांचवा, यूराल अल्ताई परिवार। और छठा, काकेसी परिवार। ख, अफ्रीका खंड। सातवां, हामी परिवार। आठवां, सुडानी परिवार। और नौवां, बंतु परिवार। ग, प्रशांत महासागरीय खंड। दसवां, मल्य पालिनेशियाई परिवार। ग्यारहवां, पापुई परिवार। और बारहवां, ऑस्ट्रेलियाई परिवार। घ, अमेरिकी खंड। तेरह, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका परिवार। उक्त 13 परिवारों के अतिरिक्त एक 14वां शीर्ष अवर्गीकृत भाषाओं का परिवार हो सकता है, जिसमें उन भाषाओं की गणना कर सकते हैं जिनको अभी तक किसी भी परिवार में स्थान नहीं मिला है। इस प्रकार संसार की भाषाओं के निम्नलिखित 14 परिवार होते हैं। पहला, भारोपीय परिवार। इस परिवार के कई नाम प्रचलित हैं। कोई इसे आर्य परिवार कहता है, कोई भारत जर्मनिक परिवार नाम देता है, कोई इसे जफेटिक परिवार का नाम अच्छा समझता है और कोई इसे भारत यूरोपीय परिवार कहता है। वैसे जनसंख्या की दृष्टि से यह भाषा परिवार सर्वप्रथम है, क्योंकि इस परिवार की भाषाएं बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। इस परिवार की भाषाएं उत्तरी भारत, अफगानिस्तान, ईरान तथा अधिकांश यूरोप में बोली जाती है। संसार की सर्वाधिक प्राचीन एवं परिष्कृत भाषाएं इसी परिवार में हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, ग्रीक, लैटिन, गोथिक आदि प्राचीन समृद्ध भाषाएं इसी परिवार की हैं। आधुनिक भाषाओं में से हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, नई ईरानी, पश्तो आदि भाषाएं इसी परिवार की हैं, जो अपने साहित्य एवं वैज्ञानिक शब्दावली की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं। सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से भी यह भाषा परिवार सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी इस परिवार का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इस भाषा परिवार की भाषाओं का जितना अधिक भाषा वैज्ञानिक अध्ययन अभी तक हुआ है, उतना अन्य किसी भाषा परिवार की भाषाओं का नहीं हुआ है। दूसरा, द्रविड़ परिवार। इस परिवार की भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। इनमें से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं प्रमुख हैं। तमिल भाषा प्रमुख रूप से तमिलनाडु प्रदेश में प्रचलित है। तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है और कन्नड़ भाषा का प्रमुख क्षेत्र कर्नाटक प्रदेश है और मलयालम भाषा केरल प्रदेश में प्रचलित है। इन प्रमुख भाषाओं के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली गोंडी, बिहार उड़ीसा की उरांव, कुर्ग बम्बई की सीमा पर प्रचलित तुलु, कुर्ग मैसूर की कोडुगु, पश्चिम बरार की कोलामी आदि भाषाएं भी इसी परिवार की मानी जाती हैं। बलूचिस्तान में प्रचलित ब्राहोही भाषा भी द्रविड़ परिवार की ही भाषा है। इस प्रकार की तमिल भाषा सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध है। इसमें प्राचीन साहित्य अधिक मिलता है। शेष भाषाओं में तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी पर्याप्त उच्च कोटि का साहित्य मिलता है। इस परिवार की भाषाएं प्रायः पर प्रत्यय प्रधान है। इन्हें मूर्धन्य ध्वनियाँ अधिक मात्रा में मिलती हैं और इनमें समस्वरता का प्रचार है। इन भाषाओं में ए, ओ दीर्घी नहीं अपितु ह्रस्व भी होते हैं। तीन लिंग एवं दो वचनों का प्रयोग होता है और लिंग निर्धारण के लिए पुरुष एवं स्त्री को आधार नहीं बनाया जाता, अपितु प्राणित्व या अप्राणित्व के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। तीसरा, तिब्बत चीनी परिवार। इसे एकाक्षरी परिवार भी कहते हैं। यह परिवार तीन भाषाओं में विभक्त है, चीनी शाखा, थाई चीनी शाखा और तिब्बत बर्मी शाखा। चीनी शाखा की प्रमुख भाषा चीनी है। इसमें ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व का साहित्य उपलब्ध है। यह भाषा उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बटी हुई है। उत्तरी वर्ग में पिकिंग की बोली आती है, जो आजकल चीन की राजभाषा है। दक्षिणी वर्ग की प्रमुख भाषा कैंटन है। इस भाषा की लिपि चित्र लिपि है। इस परिवार की दूसरी थाई चीनी शाखा की प्रमुख भाषा स्यामी है, जो श्याम देश में प्रचलित है और जिसमें पर्याप्त साहित्य मिलता है। इस शाखा की शान, अहोम और खामती बोलियां बर्मा तथा पूर्वी उत्तरी पूर्वी असम में प्रचलित हैं। तीसरी, तिब्बत बर्मी शाखा में तिब्बत देश की तिब्बती भाषा और बर्मा की बर्मी भाषा प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त बोडो, गारो, नागा, मैथी, लुशई आदि भाषाएं भी इसी शाखा में आती हैं। इस परिवार की भाषाएं अयोगात्मक हैं, जिनमें स्थान, निपात एवं सुर से अर्थबोध होता है और इस परिवार में व्याकरण का सर्वथा अभाव है। इन भाषाओं के शब्द अपरिवर्तनशील होते हैं, क्योंकि इनमें उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्ति आदि का प्रयोग नहीं होता। चौथा, सामी परिवार। इस परिवार के अंतर्गत फनेशिया, आर्मिया तथा असीरिया की भाषाएं आती हैं। प्राचीन काल में ये प्रदेश की सभ्यता के केंद्र रहे हैं। इन भाषाओं के नमूने अब केवल शिलालेखों आदि में ही मिलते हैं। बाइबल की मूल भाषा हिब्रू इसी परिवार की है। कुरान की प्राचीन अरबी भाषा भी इसी परिवार के अंतर्गत आती है। आर्मिया और अरामी भाषा भी ईसा मसीह की मातृभाषा थी। आधुनिक अरबी तथा हबशी भाषाएं इसी परिवार में आती हैं। इस परिवार की भाषाओं में तीन व्यंजन वाले धातुओं का प्रयोग होता है और मध्य में स्वरों के प्रयोग से पद रचना होती है। इस्लाम धर्म के प्रचार के साथ साथ इस परिवार की अरबी भाषा भी दूर दूर तक फैली और इसने अन्य भाषाओं को भी प्रभावित किया। पांचवा, यूराल अल्ताई परिवार। इस परिवार की दो शाखाएं प्रचलित हैं, यूराल शाखा और अल्ताई शाखा। यूराल शाखा के अंतर्गत फिनलैंड की फिनी भाषा, एस्थोनिया की एस्थोनी भाषा, लैपलैंड की लैप भाषा तथा हंगरी की मग्यार भाषा आती है। इस शाखा की भाषाएं उत्तरी रूस में श्वेत समुद्र तक फैली हुई हैं। दूसरी अल्ताई शाखा के अंतर्गत तुर्किस्तान की तुर्की, अजरबैजान की अजरबैजानी, उज्बेकिस्तान की उज्बेक, मंगोलिया के मंगोली और मंचूरिया के मंचुई आदि भाषाएं आती हैं। इनमें से तुर्की, मंगोली और मंचुई भाषाएं प्रमुख हैं। ये भाषाएं एक विस्तृत भूभाग पर फैली हुई हैं। इस परिवार की भाषाओं में से फिनी, मग्यार और तुर्की सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। तुर्की भाषा सबसे अधिक समृद्ध और सशक्त है। छठा, काकेशी परिवार। यह परिवार काकेशस पर्वत के समीपवर्ती प्रदेश में काला सागर से कैस्पियन सागर तक फैला हुआ है। इस परिवार की भाषाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, उत्तरी काकेशी और दक्षिणी काकेशी। उत्तरी काकेशी में सरकसी, चेचेन, लेगी आदि भाषाएं आती हैं और दक्षिणी काकेशी में जार्जी, मिंग्रिथिल और स्वानी भाषाएं आती हैं। ये सभी भाषाएं अश्लिष्ट हैं और इनकी पद रचना बड़ी जटिल है। इस परिवार की प्रमुख भाषा जार्जी है, जिसमें साहित्य मिलता है।